और रामेश्वर में सेतु बंध के पास में लाके उन्होंने स्नान भी किया। तो जो क्षेत्र है, जैसे प्रभुपाद जी पिछले प्रयार के तात्पर्य में बताते हैं कि इस दुर्वसन नाम का क्षेत्र का अब नाम जो है वो थिरुपुल्लानी नाम से भी है। और ये जो धनुष तीर्थ है, धनुष तीर्थ में जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो है जब सेतु बंद गया था और राम जी जो हैं वो और सभी वानर सेना के साथ लंका गए थे, और फिर जब युद्ध हुआ था और रावण को परास्त करके उसको मार के जब राम जी वापस आए थे, तो क्योंकि पुल बना हुआ था, पहले तो ये विडम्बना थी कि समुद्र को पार कैसे किया जाए, वो भी हम लीला के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन जब पुल बन गया तो जब वापस आए तो विभीषण को एक चिंता थी कि पहले तो लंका जो है वो इनएक्सेसिबल था क्योंकि इतना विशाल समुंदर बीच में था, लेकिन अब पुल बन गया था तो किसी का भी आना लंका में बहुत आसान बन गया था। कोई भी असुर, कोई भी राक्षस आके लंका का जो है वो पराक्रमण कर सकता था। तो अब लंकाधीश होने के नाते उनको चिंता थी कि लंका की सुरक्षा कैसे की जाए। तो उन्होंने यहाँ पर आके राम जी से प्रार्थना की कि जो है अब क्योंकि रावण का वध हो चुका है तो कृपा करके ये सेतु का को जो है वो दमन कर दीजिए, सेतु को आप नष्ट कर दीजिए ताकि जो है लंका सुरक्षित रहे। और फिर रावण और फिर श्री राम जी ने जो है वो अपने तीर से जो है वो इस सेतु को जो है नष्ट कर दिया था। इस सेतु के तीन भाग हो गए थे और सेतु नष्ट हो गया था। और उसके बाद जो है श्री राम जी ने इस ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के जल का आह्वान किया और धनुष तीर्थ नाम के इस पावन स्थल पर सभी तीर्थों का जल आकर इस समुद्र में मिला। और फिर राम जी और सीता लक्ष्मण जी ने यहाँ पर स्नान भी किया और फिर कहा कि जो व्यक्ति, जो जीव यहाँ पर आके स्नान करेगा तो वो मुझे बहुत प्रिय होगा और सिर्फ स्नान करने मात्र से जन्म मृत्यु के बंधन से वो मुक्त हो जाए, जैसे प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में दे रहे हैं। तो ये धनुष तीर्थ के विषय में था। और इससे पहले जो तिरुपल्लानी नाम की जगह थी और ये 108 दिव्य देश श्री वैष्णव के मुताबिक 108 दिव्य देशों में भी आता है। और यहाँ पर बहुत सारी लीलाएं हुई थी और तीन प्रमुख लीला हुई थी जिसका जो आज मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा। एक लीला हुई थी कि यहाँ पर विभीषण लंका से आकर उन्होंने राम जी का आश्रय लिया था, इसलिए जगह का नाम शरणागति क्षेत्र भी है क्योंकि उन्होंने श्री राम जी की शरणागति ली थी। यहाँ पर एक और व्यक्ति ने भगवान श्री राम की शरणागति ली थी, किसने ली होगी? समुद्र देव ने ली थी। तो उस लीला का कुछ चर्चा करेंगे। और तीसरा, फिर यहाँ से फिर सेतु बनने के लिए जो है प्रयास शुरू हुआ था और करीबन 5 दिनों में सेतु बना था जो कि 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था। तो इन तीन लीलाओं का वर्णन जो है आप रामायण में से मैं आप सब के लिए जो है यहाँ पर इसकी चर्चा करने का प्रयास करूँगा। तो ये तीनों लीलाओं का वर्णन जो है युद्ध कांड में आता है, बिल्कुल आखिरी में। जय श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। तो हम इस तीन लीलाओं का रामायण से चर्चा करेंगे और ये प्रसंग जो है वो बहुत ही रोमांचकारी है। जैसे आप सुनेंगे तो आपको भी इसका आभास होगा, जैसे मैं पढ़ रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था। तो युद्ध कांड में इसका वर्णन आता है। तो युद्ध कांड शुरू होता है जब हनुमान जी जो है लंका का दहन करके वापस आ जाते हैं, और जैसे वो वापस आते हैं तो राम जी से कहाँ मिलते हैं? राम जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जो है वो ऋषिमुख नाम के पर्वत में किष्किंधा वन में थे। तो वहाँ पर ये चार रात पहले जब सीता माता के खोज के लिए जब चतुर्मास खत्म हुआ तो सुग्रीव जो है वो छोटी मतलब मैं संक्षिप्त में बताते हुए कि सुग्रीव ने निर्णय लिया कि चार पार्टी भेजी जाए और उन्होंने जो है वो विंद को जो है उन्होंने विंद नाम के वानर को ईस्टर्न डायरेक्शन में भेजा और जो है उन्होंने उनको और सुदिश नाम के उनको वेस्टर्न डायरेक्शन में भेजा, सुशीन को नॉर्दर्न डायरेक्शन में भेजा और अंगद, अनुमान, हनुमान, अंगद, नील ऐसे कुछ वानरों को दक्षिण दिशा में भेजा। और उनको एस्टिमेशन था कि सदन दक्षिण दिशा में ही लंका है, और निश्चित रूप से हनुमान तुम्हें जो है वो सीता माता जो है वो प्राप्त हो जाएंगे, तो जो है तुम दक्षिण दिशा में जाओ। और ये आश्वासन देकर उन्होंने उनको भेज दिया। और फिर वो ढूंढते 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 अम्बी कथा है जो है वो यहाँ पर आते हैं, ये जो है वो समुद्र के पास पहुँचते हैं, और फिर महेंद्र पर्वत से हनुमान जी छलांग लगाते हैं, लंका पहुँचते हैं, सीता माता उनको ढूंढ लेती हैं, और ढूंढ के लंका को जला के जब वो वापस आते हैं तो युद्ध कांड वहाँ से शुरू होता है। और जैसे वो वापस आते हैं तो श्री राम जी से मिलते हैं, और जब श्री राम से मिलते हैं तो भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं और हनुमान का आलिंगन करते हैं। जब हनुमान से सुनते हैं कैसे हनुमान जी हैं वो लंका से सीता माता को खोज के आ गए, और हनुमान जी जो हैं वो उनको इसी ऋषिमुख पर्वत पे वेट कर रहे होते हैं, राम जी लक्ष्मण जी सुग्रीव इंतज़ार कर रहे होते हैं। और जब जैसी खुशखबरी पता चल जाती है, एक्चुअली में सुग्रीव ने एक महीने का समय दिया था सबको ढूंढ के लाने के, लेकिन एक महीने का समय से काफ़ी समय बीत गया था, सब बहुत चिंतित थे कि माता सीता और बाकी तीन वानर वापस आ गए थे, उनको सीता माता नहीं मिली थी, तो सब इंतज़ार कर रहे थे कि एक ही उम्मीद है कि हनुमान अंगद नील यही माता सीता को शायद खोज पाए। और जैसे ही हनुमान ये खुशखबरी लेके आ गए और उन्होंने खुशखबरी दी श्री राम जी को, तो राम बहुत प्रसन्न हो गए क्योंकि माता सीता का खोज हो गया था, पता चल गई थी कि माता सीता जो है वो लंका में है, और लंका भी पता चल गया था कहाँ पर है। तो हनुमान जी को भगवान श्री राम ने आलिंगन किया और भगवान श्री राम ने कहा कि तुम्हारी जो सेवा है उसने मेरा जीवन बचा लिया है, क्योंकि माता सीता के वियोग में राम जी जो है वो बहुत पीड़ा में थे और बहुत लंबा समय भी हो गया था। और फिर भगवान श्री राम ने हनुमान को कहा कि वास्तव रूप में तीन किस्म के सेवक होते हैं। एक सेवक तो वो होता है उसको अगर कोई सेवा दी जाए तो जितनी उसको सेवा दी जाती है तो उसे कहीं गुना बढ़ के करता है, अपनी क्षमता से भी ज्यादा बढ़ के करता है, तो पहला श्रेणी का सेवक होता है। दूसरी श्रेणी का सेवक वो होता है उसको सेवा दी जाती है लेकिन वो उससे कभी ज्यादा नहीं करता जितना उसको बताया जाता है, हालांकि उसमें क्षमता होती है लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं करना चाहता जितना उसको बताया जाता है, तो दूसरा श्रेणी का सेवक होता है। और तीसरा श्रेणी का सेवक जो सबसे निकृष्ट सेवक वो होता है कि उसको जो सेवा बताई जाती है हालांकि उसके अंदर क्षमता भी होती है लेकिन वो क्षमता अनुसार भी सेवा नहीं करता। लेकिन तुम कौन से हो? तुम प्रथम श्रेणी के सेवक हो। तुम्हें ये सेवा दी गई थी कि माता सीता को खोज के लाना, लेकिन तुमने सिर्फ वहां तक समाप्त नहीं किया, तुमने माता सीता को खोजा, उनको सांत्वना दी, पूरे लंकन का मायोवन किया, मतलब लंका को सुपर पूरा देखा, स्टडी किया, राक्षसों की जो शक्ति थी उसका जो है वो उसको स्टडी किया, और तुमने लंका को जला दिया, और यहाँ तक कि तुम्हारे इस पराक्रमी कार्य के कारण रावण के हृदय में भी डर बैठ गया, तो तुमने जो अपनी सेवा से कहीं गुना बढ़कर किया, तो तुम प्रथम श्रेणी के सेवक हो। और क्योंकि मैं अभी वनवास में हूँ, मैं बस तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं, तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं है, तुम्हें बस एक ही चीज़ है तुम्हें देने के लिए, वो मेरा आलिंगन है। और राम जी ने हनुमान जी को जोर से प्रेम पूर्वक आलिंगन किया, हनुमान जी भी गदगद हो गया राम जी के आलिंगन को प्राप्त करके। और फिर जो है वो तैयारी होगी कि चलो अब हमें जाना है समुन्द्र के पास, और समुन्द्र के पार फिर लंका के पास जाना है। लेकिन राम जी सोचने लगे कि मेरे लिए तो बहुत आसान है समुन्द्र को पार करना, लेकिन इतने सारे वानर सेना ये कैसे जा पाएंगे? हनुमान जी ऐसे थे कि जो 100 योजन छलांग लगा सकते थे, तो बाकी वानर उनमें तो इतनी क्षमता नहीं होगी, तो बाकी वानर कैसे जाएंगे? तो राम जी चिंतित होने लगे और फिर से मायूस हो गए। पहले थोड़े मायूस थे सीता माता के वियोग में, फिर से दोबारा मायूस हो गए। तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु मायूसी से जो है वो कोई भी कामयाबी प्राप्त नहीं हो सकती। जिस तरीके से एक अकृतज्ञ व्यक्ति, एक अनग्रेटफुल व्यक्ति जो है उसके हृदय में काइंडनेस कभी नहीं आ सकती, करुणा कभी नहीं आ सकती जो अकृतज्ञ है, उसी तरीके से एक हताश व्यक्ति कभी कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकता। तो मेरी आपसे प्रार्थना, आप हताश मत होइए, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। तो राम जी का हौसला बढ़ा, राम जी ने कहा ठीक है, मैं अगर जरूरत पड़े तो मैं समुन्द्र को ही सुखा दूंगा, तो फिर क्या चिंता है, सभी वानर इकट्ठे चल पड़ेंगे, तैरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दौड़ के चले जाएंगे। तो सब फिर तैयार हो गए। फिर राम जी ने हनुमान को कहा ठीक है बताओ कि लंका का वर्णन करो कि लंका है कैसी। तो हनुमान जी लंका का एक संक्षिप्त वर्णन करने लगे। उन्होंने लंका का कहा कि लंका जो है उसके 4 डिफेंस सिस्टम है, फेंस सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, सुरक्षा डिफेंस सिस्टम। तो ने क्या क्या, उन्होंने कहा सबसे पहले लंका तो एक बहुत बड़े पर्वत पर स्थित है, तो वहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। और उसके बाद लंका जो है वो उसके पूरी दीवार इतनी ऊंची दीवार है, पूरी सोने से बनी है, और उसके चार उसके गेट है, चार एंट्री पॉइंट्स हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और लंका के पूरे इर्द गिर्द जो है एक बहुत विशाल जो है वो एक नदी है जिसके ऊपर पार करना बहुत मुश्किल है। और वो जो है उस घने जंगल में ऐसे करके हनुमान जी और लंका का वर्णन कर रहे थे। तो फिर हनुमान जी ने कहा इसलिए अच्छा ये होगा कि सभी वानर ना जाएं, जो शक्तिशाली वानर है वो ही चले, तो आप लक्ष्मण और अंगद और जामवान, मैं, नील, ऐसे करके ही वानर चलते हैं, और जो थोड़े कमजोर वानर हैं उनको ही रोक देते हैं। सुग्रीव भी चल पड़ते हैं, सुग्रीव उन्होंने नाम लिया था। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, अभी बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, अभिजीत नाम का मुहूर्त है, तो अगर इस समय हम कोई भी मिलिट्री कैंपेन करते हैं तो निश्चित रूप से वो सफल होगा, तो हमें अपना प्रयास शुरू कर देना चाहिए और सभी वानर को ले चलना चाहिए। लेकिन अगर कोई बहुत कमजोर वानर है वो यहाँ पर रुक सकते हैं, और बाकी वानर सेना जो है मेरे साथ चल सकती है। और सब जो है वो श्री राम जी के साथ चलने लगे। जैसी वानर सेना में भी खबर फैली कि माता सीता का पता चल गया है, सब वानर बहुत संतुष्ट हो गए, बहुत खुश हो गए, और एक बहुत बड़ी विशाल यात्रा शुरू हो गई समुद्र के पास जाने के लिए। और वानर जो है वो वैसे ही बहुत फ्रिवलेस होते हैं, और वैसे ही ये सुनकर जो है और उत्साहित हो गए, तो एक दूसरे को मारते हुए, पीटते हुए, छलांग लगाते हुए, कूदते हुए जो है एक तरीके से पूरी वानर सेना, असंख्य वानर जो है वो समुद्र की ओर जाने लगे। और रास्ते में जो भी वन आता, जो वृक्ष आता, जो फल आते उसको खाते हुए, पीटते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए, पीटते हुए, सब जो है वानर सेना आगे बढ़ने लगी। इतनी देर में महेंद्र पर्वत आया, श्री राम जी जो है महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़े, और उन्हें जो है समुद्र का पहली बार समुद्र का दृश्य देखा, और वापस उतर के वो समुद्र के सामने आ गए। और जैसे ही पूरी वानर सेना, श्री राम, लक्ष्मण जी समुद्र के सामने आ गए, अब दोबारा सोचने लगे अब क्या किया जाए कि समुद्र को पार करने के लिए। इतने में सीन चेंज हो जाता है, और सीन जो है वो लंका के सभा में रावण के पास पहुंच जाता है, और रावण जो है एक सभा बिठाता है, और रावण बोलता है कि जो इनपेनिट्रेबल लंका थी, जिस लंका में कोई घुस नहीं सकता था, इनएक्सेसिबल थी, वो लंका जो आज जल रही है, ऐसा कैसा हो सकता है, और उसको जलाने वाला कौन है, एक साधारण वानर। तो रावण को हजम नहीं हो रहा था, तो उसे तुरंत एक मीटिंग बिठाई। और क्योंकि रावण डिप्लोमेटिक तो था, तो जब सब असुर आ गए, सब राक्षस बैठ गए और सभा बैठ गई, तो रावण कहने लगा, देखो कि रावण जो है शिक्षा देने लगा, और रावण कहने लगा देखो तीन किस्म के लोग होते हैं। अब उसको कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी भी छुपानी थी, और राक्षसों का उत्साह भी बढ़ाना था कि पहली बार एक वानर से हारे थे, कई राक्षस का वध कर दिया था हनुमान जी ने। तो रावण सलाह देने लगा, रावण का देखो तीन किस्म के लोग होते हैं, जो सबसे अच्छी श्रेणी का व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि कोई भी निर्णय अपने आप नहीं लेता है, जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो जो उससे वरिष्ठ होते हैं, जो ज़्यादा समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनकी वो सभा बिठाता है, और चर्चा करने के बाद जो कि एक समझौता निर्णय लिया गया हो उसी पर जो है वो कार्य करता है। लेकिन दूसरा श्रेणी का व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करता है, किसी से सलाह मशवरा नहीं करता, और जो उसकी बुद्धि कहती है उस हिसाब से वो काम करता है। और जो सबसे निकृष्ट व्यक्ति है वो सोचता भी नहीं, जो उसके मन में आता है तुरंत जो है वो कार्यशील हो जाता है। लेकिन मैं कौन सा हूँ, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का व्यक्ति, इसलिए मैं आप सब लोगों को मैंने सभा बिठाई है, और आप सब लोगों को यहाँ पर मैंने बुलाया है। और इससे पहले परामर्श दें, रावण एक और सीख देने लग जाता है, कहते तीन किस्म के परामर्श होते हैं। तो पहले किस्म की परामर्श वो होती है जो कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब जो परेशानी है उसकी ऑब्जेक्टिव स्टडी करने के बाद जो धर्म कहता है उसके हिसाब से लिया जाता है। रावण कह रहा है कि धर्म के हिसाब से सही सोच विचार करके परामर्श दिया जाए, वो सबसे अच्छी परामर्श होती है। दूसरी किस्म के परामर्श वो होती है जो कि हीटेड डिस्कशन से ली जाए, सोच बोझ से नहीं, हीटेड डिस्कशन के बाद लिया जाए और धर्म किसकी धर्म जो है उसके बीच में उसका उसकी कोई चर्चा ना। लेकिन जो सबसे निकृष्ट किस्म का परामर्श वो व्यक्ति देता है जो कि डिस्कस भी नहीं करता, सिर्फ दूसरे व्यक्ति को फ्लैटर करने के लिए या फिर अहंकारवश परामर्श दे देता है, वो सबसे निकृष्ट किस्म का परामर्श। तो मैं कौन सा चाहता हूं आपसे, कैसा परामर्श? सर्वप्रथम परामर्श है वो मैं प्राप्त वो आपसे चाहता हूं, वो परामर्श दीजिए। तो जो परामर्श मिलता है, सबसे पहले ब्रह्मस्वन करके जो है एक असुर होता है वो मिलता है, तो कहता है, वो सब कहते हैं कि रावण कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, ये कौन है, या तो वानर है या मनुष्य है, दोनों निकृष्ट योनि है, आपने तो देवताओं को हराया हुआ, याद कीजिए कि आपने कुबेर को परास्त किया था, तो अगर आप कुबेर को परास्त कर सकते हैं तो ये राम लक्ष्मण ये वानर ये कौन होते हैं। फिर दूसरा असुर कहने लगा, वासुर रूप में तो हनुमान ने लंका का दहन इसलिए कर दिया क्योंकि हम अलर्ट नहीं थे, तो असावधान होने के कारण जो है इतना बर्बादी या जो है तबाही न मचा पाया, अगर हम सावधान होते तो वानर क्या कर पाता। तीसरा एक वज्र दंश करके असुर था, उसने कहा कि उसको क्रोध आने लगा, उसने कहा कि रावण आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं जाता हूँ सभी वानरों को खत्म कर देता। इतने में चौथा असुर बोलने लगा, अरे वानरों को मारने की क्या जरूरत है, मैं राम और लक्ष्मण का ही वध कर देता हूँ, राम और लक्ष्मण का ही वध हो गया तो सब वानर अपने आप ही मर जाएंगे। ऐसे जो है वो असुर जो है डिंगे मारने लगे। लेकिन इसके बीच में विभीषण आ गए और विभीषण जो है वो अच्छी सलाह देने लगे, और विभीषण ने कहा रुको रुको रुको, कोई भी दंड देने से पहले सही नीति क्या है, साम दाम दंड और भेद। दंड तो सबसे आखिरी में आता है, सबसे पहले साम, फिर दाम, फिर भेंट, फिर भेद, फिर उसके बाद दंड। तो दंड तुरंत नहीं लेना चाहिए। वास्तव रूप में सबसे अच्छा परामर्श कौन दे रहा था? विभीषण। तुमने कहा सीधा दंड की बात नहीं करो, और दंड तो उस पर किया जाता है जो कि गलत हो, जिसने जो दूषित हो, जिसने जो दुष्ट हो, जिसने गलत कार्य किया। लेकिन श्री राम तो बिल्कुल ठीक है, वो तो धर्म के रास्ते में है। रावण तुम अधर्म में हो, तुमने सीता माता का अपहरण किया है, अगर तुम दंड दोगे तो निश्चित रूप से तुम हार जाओगे, तुम परास्त हो जाओगे। तो तुम क्या करो, आज ही सुंदर तोहफे लेकर, भेंट लेकर, हाथ जोड़कर माता सीता को जो है प्रणाम करते हुए, उनको प्रणाम मुद्रा में रहते हुए तुम आज ही राम जी की शरण लो, उनसे क्षमा मांगो, उनको भेंट अर्पित करो, उनका गुणगान करो, माता सीता को भेंट में दो, और आप देखो युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो रावण ने सुना, रावण बहुत क्रोध हो गया और उसे तुरंत जो है सभा को परास्त कर, मतलब जो है वो दरखास्त कर दिया और सब असुर चले गए। रावण बहुत कुंठित हो गया और उसने कहा, वो समझ रहा था, तो रावण बहुत परेशान होने लगा। इतने में विभीषण दोबारा आ गए रावण के पास, उन्होंने कहा देखो रावण, तुम लंका में देख सकते हो कि सब जो है वो इल ओमेंस, इल ओमेंस को क्या कहेंगे, अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं लंका में। अगर कोई यज्ञ करता है तो अग्नि नहीं जलती, सिर्फ धुआं आता है, और हर घर के रसोई घर में सर्प जो अशुभ जीव हैं वो ही पाए जाते हैं, और आप लंका के महल में देखोगे तो जो अशुभ पक्षी हैं जैसे क्रो कौवा जो है वो हर घर में ऊपर जो है वो आप हमें पाए जाते हैं, इसके अलावा वल्चर गिद्ध वो जो है आसमान में उड़ते हुए पाए जाते हैं, फिर उसके बाद जैकॉल, क्या कहेंगे जैकॉल, लोमड़ी लोमड़ी सियार, ऐसी आवाजें लंका में सुनाई दे रही। तो इस सब अशुभ चिन्हों से हमें समझ में आ सकता है कि निश्चित रूप से कुछ अधर्म हो रहा है, और ये अधर्म क्या हुआ है कि तुमने माता सीता का अपहरण कर लिया है। इसलिए मैं तुमसे यही परामर्श है कि आज ही कुछ और विचार ना करके तुम माता सीता को वापस कर दो। तो रावण और कुंठित हो गया, उसने विभीषण को जो है वो वहाँ से भेज दिया, और वो सोचने लगा और उसकी कामों की इच्छाएँ और बढ़ने लगी। हालांकि वो समझ रहा था कि निश्चित रूप से मैं राम जी से नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि रावण को ये भी पता था कि जो मेरे दो भाई थे खर दूषण, उनकी शक्ति उतनी थी जितनी मेरे अंदर है, और राम जी ने अकेले खर दूषण का वध कर दिया था, और अगर खर दूषण का वध हो गया, इसका मतलब वो जो है वो भगवान से अभिन्न, तो राम जी जो है उनकी शक्ति मुझसे भी ज्यादा है। तो लेकिन इस बात को सहन स्वीकार नहीं कर पा रहा था और वो सीता माता का भोग करना चाहता था, तो जो है वो उसकी काम इच्छाएं बहुत बढ़ने लगी। अब जो बाकी लंकावासी थे वो भी समझ रहे थे कि ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं या अशुभ चिन्ह है। अब कई लंकावासी जो हैं वो रावण से भी घृणा कर रहे थे कि रावण जो है वो अब पूरी लंका का बर्बादी करेगा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते थे। तो रावण ने फिर से एक सभा बिठाई और रावण जो है अब सभा में बोलने लगा। वो कहने लगा, देखो सब असुर जब इकट्ठे हो गए तो रावण कहने लगा, मैं आप सबसे एक बात जो है व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैंने जो है एक मेरा जो हृदय है, मेरा जो दिल है, वो माता सीता के प्रति आ गया है और मैं उनको भोग करना चाहता हूँ। और मेरी इच्छा है कि मैं सीता को जो है अपनी पटरानी बताऊँ और मैंने उसका अपहरण कर लिया। अब रावण झूठ बोलने लगा अपनी बात को थकाने के लिए, और रावण कहने लगा, माता सीता भी तैयार हो गई, लेकिन माता सीता ये कह रही है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं, एक साल के बाद। तो बस कुछ ही समय की बात, तो सीता जो है वो भी तैयार, लेकिन राम और लक्ष्मण जो है वो आक्रमण करने को जो है आतुर, और वो लंका पे आक्रमण कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ कि क्या हम राम और लक्ष्मण को हरा सकते हैं युद्ध में। तो जब रावण ने ऐसी बात रखी तो तब तक कुंभकर्ण भी जाग चुका था, कुंभकर्ण भी उस सभा में था। तो कुंभकर्ण चिल्लाने लगा कि तुम अभी क्यों सलाह ले रहे हो, सलाह तब लेनी थी जब तुमने अपहरण किया, तब पूछना चाहिए था, अभी पूछने का क्या फायदा। लेकिन चलो, तुमसे जो भूल हुई सो हुई, अभी मैं जाकर पूरे राम और लक्ष्मण और वानर सेना का वध कर देता हूँ। लेकिन वहां पर एक असुर और था, उसका नाम था महापर्श। उसने कहा, रावण, अगर कोई व्यक्ति एक घने जंगल से जहाँ सर्प ही सर्प हो, बड़ी मुश्किल और कठिनाई से वो शहद निकाल के आता है, तो इतनी कठिनाई से जब शहद प्राप्त हो जाए तो उसको व्यर्थ क्यों जाने दे। अरे सीता माता का उन्होंने अपहरण भी कर लिया, इतना सब कुछ हो गया, तो तुम जबरदस्ती उसका भोग क्यों निकल लेते। तो लड़ाई तो देखी जाएगी, पहले तो तुम उसकी तुम्हारी भोग करने की इच्छा तो तुम भोग ही कर लो। लेकिन रावण कहने लगा, मैं भोग नहीं कर सकता, तुम्हें मैं एक इतिहास बताना चाहता हूँ कि एक पुंजक स्थली नाम की अप्सरा थी, तो वो ब्रह्मलोक जा रही थी, तो मैं उसके पति भी कामुक हो गया। तो जब मैंने उसको देखा तो मुझसे कामुक इच्छाएं रोकी नहीं गई, तो मैंने भी उसका बलात्कार कर दिया, और जब बलात्कार कर दिया तो वो अप्सरा जो है वो उस निर्वस्त्र स्थिति में रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गई। जब ब्रह्मा जी के पास गई, जब उसने पूरा व्याख्यान किया क्या घटना हुई, तो उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल लेकर एक श्राप छोड़ा कि अगर रावण किसी स्त्री का जबरदस्ती उपभोग करने की कोशिश करेगा तो उसी समय उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो उस श्राप के कारण मैं सीता माता को हाथ भी नहीं लगा सकता। तो जो है फिर असुर और वो उनका जो है वो कहने लगे, ठीक है रावण, तुम चिंता मत करो, अभी हम सब जो है वो युद्ध करने के लिए तैयार हैं और सभी का वध कर देते हैं। इंद्रजीत कहते हैं, मैंने तो इंद्र को हराया है। तो ये राम और लक्ष्मण जैसे साधारण मनुष्य क्या होते हैं, अभी जाते हैं हम युद्ध करते हैं, उनका परास्त कर देंगे, उनको हरा देंगे, खत्म कर देंगे उनको, ऐसे सब असुर तैयार हो जाते हैं। फिर भी भीष्म बोलते हैं कि रावण तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि माता सीता जो है वो काल सर के समान तुम्हारे जो है वो गले में बैठी है, और किसी समय में वो काल सर तुम्हें दस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ना सिर्फ तुम्हारी मृत्यु होगी, पूरी लंका के जितने भी असुर हैं, राक्षस हैं, उन सबकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे रामायण में वर्णन है कि लंका में कितने राक्षस थे, तो रामायण में लिखा है 320 मिलियन। कितना हो गया? 320 मिलियन, मतलब 32 करोड़। 32 करोड़ राक्षस थे सिर्फ लंका में। ये वो थे जो कि रावण के पर्सनल सर्वेंट्स के अलावा जो बाकी निवासी थे, लंकावासी थे, 32 करोड़ राक्षस थे। तो विभीषण ने कहा कि बाकी 32 करोड़ राक्षस का भी वध हो जाएगा तुम्हारी एक भूल के कारण, तो तुम आज ही जाओ और श्री राम के चरणों में पड़ जाओ। जब ये इंद्रजीत ने सुना तो इंद्रजीत और क्रोधित हो गया, और उसने कहा चाचा हाजी तुम कायर के समान। और जो है तुम हीजड़े के समान, यहां तक कहा उसने, तुम जो है वो कायर हो, और अगर तुम्हें राम जी से डर लग रहा है तो तुम पीछे हट जाओ, मैं ही काफी हूं। आज भी मुझे याद है कि मैंने इंद्र को हराया था और वो एरावत के साथ मेरे चरणों में गिरा हुआ था, तो मैं अकेले जाके राम का वध कर सकता हूं। जब इंद्रजीत के मुख से ऐसे सुना, विभीषण को बहुत दुख हुआ और ने कहा इंद्रजीत तुम एक नाबालिग लड़के हो, तुम एक मूर्ख लड़के हो, तुम जानते हो राम जी की क्या स्थिति है, वो स्वयं विष्णु है, वो आज चाहे से ब्रिकुटी हिलाकर पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। जब रावण ने सुना तो रावण बड़ा कुंठित हो गया, उनने कहा वास्तव रूप में एक शत्रु होना ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक मित्र जो कि तुम्हारा तुम्हारा अनहित चाहता है वो ज्यादा खतरनाक है, तो अगर ये शब्द तुम मेरे भाई नहीं होते और ये शब्द कोई और लेता तो आज ही मैं उसका वध कर देता। तो जब विभीषण ने सुना, इंद्रजीत के मुख से सुना और अपने भाई से भी सुन लिया और देखा कि रावण ने इंद्रजीत को भी कुछ नहीं कहा, तो विभीषण बहुत कुंठित हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें हाथ जोड़ के रावण को कहा, रावण तुम मेरे बड़े भाई हो, मुझे तुम्हें अच्छी सलाह देनी थी तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ कि प्रशंसा करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो कटु शब्द हैं जो तुम्हारी भलाई के लिए, वो बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन अगर तुम्हें स्वीकार नहीं है तो जो है मैं तुम्हें और सलाह ना देकर मैं अब तुमसे अपने रिश्ता को तोड़कर मैं राम जी के आश्रम में जा रहा हूँ और मैं इस परिवार का परित्याग करता हूँ। और ये बोलकर विभीषण जो है वो अपने चार मंत्री के साथ जो है वहाँ से उड़ान भर के जो है वो 100 योजन को उड़ते हुए उस इस स्थान पे आ जाते हैं जिस स्थान की हम जहाँ चैतन्य महाप्रभु आए। तो जब राम जी लक्ष्मण जी वहाँ पर थे तो सबसे पहले वानरों ने देखा कि एक राक्षस आ रहे, साथ में 4 और राक्षस हैं, तो सब तैयार हो गए, किसी ने पत्थर उठा लिया, किसी ने पेड़ उखाड़ के उठा लिया, तो सब आक्रमण करने लगे। तो विभीषण ने आसमान से कहा कि मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं राम जी का आश्रय लेने के लिए आया हूँ। हालांकि मैंने रावण को कहा था कि वो माता सीता को वापस दे दें, लेकिन वो माना नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि परम पुरुषोत्तम महान विष्णु है, महान श्री राम है, तो उनका मैं आश्रय लेना चाहता हूँ। तो सुग्रीव भी, जब सुग्रीव ने सुना तो राम जी के पास ये संदेश देने के लिए गए, तो सुग्रीव ने कहा ऐसा विभीषण आया है, लेकिन मुझे उसके ऊपर शक है कि हो सकता है कि वो हमारे साथ मिल जाए और जब हम पूर्ण रूप से तैयार ना हो तो वो हमें पे आक्रमण कर दें। तो राम जी ने बाकी बानों से सलाह लिया कि तुम्हारी क्या सलाह है, तो अंगद से पूछा। तो जब अंगद को पूछा तो अंगद ने कहा एक काम करते हैं, हमारे ये फायदे में भी, ये सौदा हमारे फायदे में भी है, क्यों, विभीषण को लंका के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, तो अगर विभीषण हमारे साथ हो जाए तो लंका के ऊपर युद्ध करना बड़ा आसान हो जाएगा, तो हम इसको अपनी सेना में ले लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर जो है उसको देखते हैं कि वासुरू में इसकी मंशा सही है या गलत है। फिर जामवान से पूछा तो जामवान ने कहा कि हम कुछ समय तक इसको, इन विभीषण को देखते हैं और लगेगा कि जब सब ठीक है तो फिर हम इसको अपनी सेना में ले लेंगे। हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी ने कहा हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम विभीषण को ही देखते रहें, हमें युद्ध की तैयारी करनी है, लेकिन किसी के शब्दों से और किसी के व्यवहार से ये जाना जा सकता है कि उसके हृदय की मंशा क्या है, और अगर किसी की मंशा दुष्ट है तो निश्चित रूप से उसके चेहरे में या उसके शरीर में या उसकी वाणी में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर विभीषण की मंशा दूषित होती तो कहीं ना कहीं उसके कुछ ऐसे लक्षण पता चल जाते, लेकिन मैंने विभीषण को देखा है, विभीषण वास्तव रूप में राम जी की शरण लेना चाहता है। तो राम जी ने ये सुना तो वो हनुमान की बातों से खुश हुए, तो उन्होंने कहा ठीक है विभीषण को अपनी सेना में ले लेते हैं। तो सुग्रीव कहने लगा अगर प्रभु उसने अपने भाई को त्याग दिया है तो क्या भरोसा है वो आपको नहीं त्यागेगा। तो राम जी ने कहा, राम जी थोड़े क्रोध हो गए, उन्होंने कहा कि क्या एक एक साधारण राक्षस मेरा वध कर सकता है, अगर वो उसने अपने भाई को त्याग भी दिया, अगर वो मेरे पर आक्रमण भी कर दे तो क्या एक राक्षस मेरा वध कर सकता है, आज मैं अकेले चाहूँ तो रावण और सभी राक्षस सेना को वध कर सकता है, लेकिन धर्म क्या कहता है, राम जी कहने लगे, धर्म ये कहता है कि अगर कोई हमारा आश्रय ले तो उसको आश्रय देना चाहिए। और वो राम जी कहने लगे कि एक बारी एक पक्षी, एक मादा पक्षी थी, तो मादा पक्षी ने देखा कि एक शिकारी ने नर पक्षी को कैद कर लिया है, और वो शिकारी नर पक्षी को कैद करने के बाद उसी वृक्ष में आ बैठा जिस वृक्ष में ऊपर मादा पक्षी थी। तो वो मादा पक्षी का घर था, तो वो एक तरीके से वो शिकारी क्या बन गया, अतिथि बन गया। तो जो मादा पक्षी थी वो उस शिकारी का स्वागत करने के लिए गई, लेकिन उस वृक्ष में कोई फल कोई पत्ते भी नहीं थे, कुछ अर्पित करने को दे नहीं भी था। तो मादा पक्षी ने अपना शरीर उनकी सेवा में दे दिया कि आप मेरा शरीर से भी कुछ सेवा ले सकते हैं तो कृपा करके लीजिए, क्योंकि अतिथि देवो भव, आप अतिथि। तो राम जी कहने लगे अगर एक मादा पक्षी ऐसा कर सकती है मेरे इस काल में तो मैं तो परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ। और ये मेरा सनातन एक मेरा व्रत है कि अगर कोई भी मेरा आश्रय लेता है, कोई एक बारी कह दे कि मैं आपका हूं, तो ये मेरा धर्म है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। आज रावण भी तैयार हो कि मेरा आश्रय लेने के लिए आ जाए, तब भी मैं उसको आश्रय देने को तैयार हो जाऊँ, उसको माफ करने को तैयार हो जाऊँ। तो जो है ऐसे फिर विभीषण को स्वीकार कर लिया, और सब ने फिर विभीषण ने तुरंत श्री राम जी के चरणों को स्पर्श किया। और विभीषण की इस मंशा को देखकर राम जी ने कहा ठीक है आज ही तुम्हें मैं हम लंकाधीश बनाते हैं, तो जाओ हनुमान समुद्र का जल लेके आओ और आज हम इनका अभिषेक करके इनको लंकाधीश बना देते हैं। तो उसी समय विभीषण का अभिषेक हुआ और उनको नया लंकाधीश बना दिया। तो एक लीला यहाँ पर इस स्थान पर जहाँ पर चित्र महाप्रभु, एक लीला ये हुई। फिर उसके बाद सब सोच ही रहे थे, तो फिर राम जी ने सोचा कि विभीषण से पूछा जाए कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो राम जी ने विभीषण से पूछा कि समुद्र को कैसे पार कर सकते इतनी बड़ी वानर सेना। तो राम जी ने वास्तव रूप में उपाय दिया था कि आप काम क्या करें कि जो समुद्र हैं वो आपके जो इक्ष्वाकु कुल है उसके प्रति बहुत कृतज्ञ है। तो राम जी सुनने लगे कैसे, तो उन्होंने कहा इक्ष्वाकु कुल में एक राजा सगर थे, तो जब वो अश्वमेध यज्ञ किया था तो उन्होंने जो है वो समुद्र को खोद के कहीं गुना बड़ा कर दिया था, तो इसलिए समुद्र आज भी महाराजा सगर के प्रति कृतज्ञ है। और महाराजा सगर इक्ष्वाकु कुल में थे और आप भी इक्ष्वाकु कुल में आए हैं, तो अगर आप उनको कोई प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से स्वीकार कर लेंगे, तो आप जाकर जो है समुद्र देव से प्रार्थना कर सकते हैं। तो राम जी जो है वो इस स्थान पर बैठ कर एक कूसा घास की मैट पर बैठ के जो है वो समुद्र देव को बुलाने लगे। इसलिए जगह का नाम जो है वो तिरुपुल्लानी है। तिरुपुल्लानी तमिल शब्द है, तिरु मतलब भगवान, पुल मतलब कूस घास, और आनी मतलब बैठना। इसका मतलब यहां श्री राम जी कूसा घास पर बैठे थे समुद्र देव को बुलाने के। तो राम जी बैठ गए तिरुपुल्लानी में कूसा घास के ऊपर और समुद्र देव को बुलाने लगे। जब समुद्र देव को बुलाने लगे तो बहुत ही विनम्रता पूर्वक जो है वो समुद्र देव को आह्वान करने लगे। लेकिन 3 दिन 3 रात हो गए, राम जी उपवास में भी थे, समुद्र देव नहीं आए। अब जब 3 दिन पूरे हो गए और राम जी ने देखा कि समुद्र देव तो ने वही चूं की आवाज़ भी नहीं निकाली, आने की बात तो बहुत दूर की, तो राम जी लक्ष्मण को कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि दुष्ट लोगों के सामने जो है वो सुशील व्यवहार काम नहीं करता है। समुद्र को लग रहा है कि मेरी विनम्रता और मेरी सुशीलता जो है वो कायर के लक्षण ले रहा है, मुझे इम्पोर्टेंट मान रहा है, तो मुझे शायद समुद्र को जो है कुछ सीख सिखानी होगी। तो उसको लगता है कि वो मुझे मेरी शक्ति को जानता नहीं, मुझे लगता है कि उसके हृदय में अहंकार है। मैं अनंत समुद्र का मालिक और मैं उसको बुला रहा हूँ और वो आने को तैयार नहीं, तो अभी मैं समुद्र को सुखा देता हूँ। और राम जी ने क्या किया, राम जी की आंखें गुस्से से लाल हुई और राम जी ने एक तीर लिया और सीधा समुद्र में फेंका। और जैसे ही समुद्र में फेंका तो सब वानर ने क्या देखा कि समुद्र का पानी बॉयल होने लगा उसमें भाप निकलने लगी और जोर जोर से समुद्र के जीव जो है वो हुचकोले खाने लगे, समुद्र के ऊपर जल से ऊपर नीचे गिरने लगे और उसमें जो है बड़े बड़े तिमंगला मछली भी थी, और उसमें जो है अलग अलग जो समुद्र के जीव थे वो पीड़ित होने लगे और समुद्र का पानी उबलने लगा। अब राम जी ने सोचा कि अब तो मैं इसको सुखा दूंगा, अब भी समुद्र देव नहीं आए। अपने ब्रह्मास्त्र निकाला और ब्रह्मास्त्र निकाल कर अपने धनुष पे बांधा, और जब ब्रह्मास्त्र तो उन्होंने खींचा तो समुद्र को लगा कि अब जो है वो सबक सीख गए, और तुरंत हाथ जोड़कर जो है वो राम जी के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे गलती हो गई, कृपा करें क्षमा कीजिए, अगर ये ब्रह्मास्त्र आप छोड़ देंगे तो अभी तो पानी उबल रहा है, इसके छोड़ते जो है पूरा ही उबल जाएगा और पूरा ही भाप बन जाएगा और जो है इसे भी रेगिस्तान बन जाएगा, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिए। तो राम जी कहते हैं, राम जी जो है वो पताड़ने लगे, तुमने कहा कि मैंने तुम्हें कितने दिन बुलाया और तुम आए नहीं, आप बताओ कि जो है हमें समुद्र पार करना है और वानरों को एक सेतु चाहिए, तो हम सेतु कैसे बना सकते हैं। तो समुद्र देव ने कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा में हूँ, तो आपके ही सेना में एक नल नाम के वानर है, वो विश्वकर्मा के पुत्र हैं, उनको सारा ज्ञान है कि सेतु कैसे बनाना है, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कहने का मतलब ये, तो आप उनको बोलिए और वो जो है तुरंत पत्थरों का इंतजाम करेंगे और पत्थरों को कैसे जोड़ना है, सेतु कैसे बनाना सब वो जानते हैं, और अगर कोई भी कोई पत्थर फेंकेगा आप चिंता मत कीजिए, कोई पत्थर डूबेगा नहीं, मैं तैयार बैठा हूँ, और कोई भी मछली कोई भी जलचर जो है वो उस सेतु को जो है कोई हानि नहीं पहुँचाएगा, तो आप सेतु बना सकते हैं। तो समुद्र देव ने जो क्षमा मांगी थी, शरणागति ली थी, वो भी यहाँ ली थी इसी क्षेत्र में, इसलिए क्षेत्र का नाम शरणागति क्षेत्र भी है, और फिर सेतु बनने की तैयारी हुई, और फिर नल को नियुक्त किया गया सेतु बनाने के लिए, और सब वानर अलग अलग जो है वो पत्थर ढूंढने लगे, कोई पश्चिम जाने लगा, कोई पूर्व जाने लगा, कोई उत्तर जाने लगा, और पत्थर जो है फेंकने लगे, और पहले दिन बताया जाता है जो है वो कुछ 10 योजन बना, फिर कुछ 30 योजन, ऐसे ऐसे 5 दिनों में फिर सब वानर सेना ने मिलकर जो है वो 10 योजन चौड़ा और 100 योजन सेतु पूरा किया। तो और वो भी लीला इसी स्थान पे हुई। तो ये कुछ आज के संबंधित प्रसंग था जो कि मैंने लिया, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी,
तो जी क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया था कि ब्रह्मा जी ने रावण को श्राप दिया था कि किसी भी स्त्री को अगर जबरदस्ती अगर वो करना चाहेगा तो उसको उसका नाश हो जाएगा, तो पर उसमें जब रावण को पता था इसके बारे में और ऑलरेडी वो सीता जी को कन्विंस करने की कोशिश भी कर चुका था जिस पर उसको रिफ्यूज़ल मिला था, तो फिर भी वो ऐसा क्यों करना चाह रहा था, मतलब क्यों करना चाह रहा था जब उसको मालूम था कि वो उसके बाद भी शी इज अ चेस लेडी, तो उसके बाद भी मर ही जाएगा, तो फिर उसने युद्ध करने के लिए क्यों कोशिश करी।
इसलिए ऐसा हुआ था कि जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया तो उसको पता था वो जबरदस्ती तो कर नहीं सकता था, लेकिन शूर्पणखा ने जब रावण को कहा था कि ऐसी सीता माता है और बहुत सुंदर स्त्री है, जब रावण ने भी सीता माता को देखा था तो क्योंकि वो लक्ष्मी देवी है स्वयं, तो पूरे तीनों लोकों में उससे सुंदर स्त्री नहीं थी, तो रावण क्योंकि वासी रूप में अपने कामों की इच्छाओं के लिए वैसे ही वो जाना जाता था, तो उसकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि वो माता सीता का भोग कर सके, और इसलिए उसने अशोक वाटिका में जितनी भी राक्षसी थी तो उनको यही सेवा दी थी, उनको कहा था कि मैं 1 साल तक समय तुम्हें देता हूँ कि तुम 1 साल तक चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, चाहे कोई तोहफा देना पड़े, चाहे जो है उसको पुष्टि प्रशंसा करना पड़े, चाहे दंडित क्यों ना करना पड़े, किसी ना किसी तरीके से तुम सीता माता को अपनाओ, अगर 1 साल तक सीता माता तैयार नहीं हुई, तुम 1 साल के बाद मेरे ब्रेकफास्ट में सीता माता को काट कर जो है मुझे सर्व कर देना, ये शर्त रखी थी, तो जबरदस्ती तो कर नहीं सकता था, तुमने कहा था 1 साल तो तुम उसको मनाओ, और अगर 1 साल तक वो नहीं मानी तो अगले दिन जो है उसको मेरे भोजन के रूप में तुम उसको मुझे खिला दे, तो ये बात उठी ऐसे थी। तो 9:07 हो गए, अगर आप लोग प्रसाद लेने जाना चाहें जा सकते हैं।
अब जैसे बता रहे कि धनुष जी वो जगह है जहाँ पे राम जी ने अपने धनुष में वो जो पूरा सेतु बनाया था वो तोड़ दिया था वो, लेकिन जैसे अभी हम लोग जैसे सेशन देते हैं और पूरा एविडेंस देते हैं कि अभी भी वो मतलब लाइक सेटेलाइट से पिक्चर से उतना पूरा एविडेंस मिला है कि वो सेतु अभी भी है, तो वो क्या है?
तो ये दिखाते हैं वो अंडर वाटर सेतु बंदा थोड़ा ना हुआ है, तो ओवर वाटर थोड़ी ना ब्रिज है, ब्रिज तो था कि पानी को पार करने के लिए, पानी के ऊपर था, लेकिन जो हम सैटेलाइट से देखते हैं कि कैसे अंडर वाटर सी बेड पे जो आज भी वो पत्थर की वैसी श्रृंखला है, सेतु अभी भी है लेकिन अंडर वाटर सी बेड के ऊपर, ऊपर थोड़े नहीं है वो,
जैसे आप टूट के तीन भागों में से,
इसमें लिखा है कि तीन भाग में हो गया था, ऐसा नहीं था कि सभी पत्थर अलग हो गए थे, तो वो तीन भाग में टूट गया था, तो टूट कर ऐसा लगता है ये देखकर कि वो समुद्र टूटने के कारण समुद्र के अंदर डूब गया था वो सेतु। पहले तो था कि समुद्र देव ने कहा था मैं डूबने नहीं दूंगा, लेकिन जब धनुष से उन्होंने तोड़ दिया था तो वो ऐसा लगता है कि पत्थर डूब गए होंगे, तो जो नीचे बैठे तो अभी वो उस आकार के रूप में है जो कि रमेश्वरम से लेकर उस लंका के स्थान पर अभी भी ऐसे दिखाई देता कि जोड़े हुए हैं, जिससे संभावना लगती कि वो सेतु है, लेकिन सेतु जो है वो राम जी ने तोड़ा तो था तभी सेतु आज नहीं है, लेकिन अगर ये लीला नहीं होती तो क्या पता सेतु आज भी ऊपर ही बना होता। लेकिन हम सैटेलाइट से देखते हैं, हम ये देखते हैं कि सी बेड के ऊपर पत्थर अभी भी रखे हुए हैं जो कि उसी स्थान से लेकर लंका तक जाते हैं, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद वही सेतु है जो कि जब राम जी ने बनाया था, तो ऐसा सी बेड के सी के ऊपर थोड़ी ना, सी बेड पर है सारे पत्थर जो हम सैटेलाइट में देखते हैं, ब्रिज थोड़ी ना देखते हैं, तो अंडर वाटर जो पत्थर हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौर प्रेमानंदे।